जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय भक्त वृंद। 13वें व्यास से जो है हम पाठ शुरू करते हैं, आप सब सुनिए। वृंदावन गोविंद स्थान महादेव लाय शिव मंदिर गोपाल महाशिव हाय केशी तीर्थ काली राधा दी के कोई स्नान श्री गोपाल देखी दाहा करे कृष्ण गोपाल सुंदर जो दुहा मन नील हरी सुख पाइय रहे ताहा दिन दुई चारी दुई विप्र मधे कह विप्र वृद्ध प्राय आर विप्र जुबा तार करे न सहाय छोट विप्र करे सदा ताहार सेवा ताहार सेवाए विप्र तुष्ट हईल विप्र बोले तुम्हें मरा बहु सेवा कईल সহায় হইয়া মোর তীর্থ সহায় হইয়া মোর তীর্থ করাইল ত্রেয় পিতা রয়েছে না করে সে বহন তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম সম কৃতজ্ঞতা হয় তোমার না কইল সমান অতএব তোমায় আমি দিব কন্যা দেন ছোট বিপ্র কয় শুন বিপ্র মহাশয় অসম্ভব কাহ কেন যে নাহি হয় তো ইহা তক ইকত্রিশে ব্যয় হ্যাঁ অনুবাদ পড়তে অনুবাদ এবং তারপরে জগৎগুরু শিবপ্রভাত দ্বারা শিবপ্রভাত কি পঞ্চকোশী বৃন্দাবন ধাম বৃন্দাবন গ্রাম মে যাহা আপ গোবিন্দ মন্দির হ্যাঁ পহলে এক বিশাল মন্দির থা যাহা गोपाल की महासेवा की जाती थी। तो यह वो स्थान है होता है कि साक्षी गोपाल का मंदिर वृंदावन में काम था, तो जहां पे अभी गोविंद देव का मंदिर है वहां पहले साक्षी गोपाल का मंदिर था। तो फिर उसके बाद जब साक्षी गोपाल वहां से चले गए, कितने दिन तक चले हो पैदल तो याद है पहला श्लोक है इस प्रकार इस अध्याय का पहला दो हफ्ते तक ना वन मंथ एक महीना नहीं 100 दिन 100 डेज 100 डेज पूरे 100 दिन तक जो है 100 दिन की परिक्रमा की थी भगवान ने भक्त के पीछे। तो 7 दिन की परिक्रमा में जो है टाइम हो जाती है 100 दिन की परिक्रमा सौ भगवान 100 दिन तक चले गए भक्त के पीछे पीछे और शायद और भी चलते हैं अगर भक्त पीछे मुड़ के नहीं देखता तो ये तो अभी जहां पर साक्षी गोपाल का जो मंदिर था ऑरिजिनली गोपाल साक्षी नाम के बाद में जुड़ा है तो गोपाल जी का ही मंदिर था। तो वो अभी जहां पर गोविंद देव मंदिर है वहां पर स्थित थे। तो फिर गोविंद देव कहां थे ये भी सवाल है। तो अभी तो जहां पर गोविंद देव है वो पहले साक्षी गोपाल थे, तो पहले गोविंद देव थे, गोविंद देव से थोड़ी दूर गए थे जहां पर गोविंद देव बराबर हुए। तो उसका एक हनुमान का टीला क्या थोड़ा आगे बेसिकली वहां पर भजन हनुमान मंदिर इसलिए नाम पड़ेगा हनुमान का टीला दैट प्लेस। पहले गोविंद देव वहां थे, वहां से बरामद हुए फिर गोस्वामी जो है खोद के फिर यहाँ पर लेते जो कि क्या डिस्टेंस होगा यहाँ से मान लीजिए 1900 किलोमीटर डिस्टेंस में। तो अब फिर आगे जब वो वहां पर उन्होंने देखा साक्षी गोपाल के दर्शन दर्शन किए वहां की सेवा होती थी। तो उसके बाद यमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न घाटों में यथा केशी घाट तथा कालिया घाट में स्नान करने के बाद वे दोनों यात्री गोपाल मंदिर देखने गए, तत्पश्चात उस मंदिर में विश्राम किया। तभी क्या हुआ, वो तो ब्राह्मणों की बात हो रही है, एक कनिष्ठ ब्राह्मण और एक वरिष्ठ ब्राह्मण, एक उम्र में छोटे एक उम्र में बड़े दोनों ब्राह्मण। और वो कैसे आए थे, पहले सब तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए आते आते फैंक थे वो मथुरा, फिर मथुरा से वृंदावन। तो जैसे बताया जाता है कि जब वृंदावन में एंट्री कर, मतलब अगर ब्रह्मंड परिक्रमा हो रही होती है तो उसके अंदर तो फिर इवन उससे पहले जब जैसे यूली हम लोग वृंदावन से शुरू करते हैं, पर क्योंकि ब्रह्मंड जो बाहर से घुस रहा होता है, कि हमारे ब्रह्मंड परिक्रमा मतलब वृंदावन में इससे शुरू होती है, पर जब बाहर से आते हैं तो परिक्रमा करते हुए आते हैं, ऐसे सूरत में जो है वो सब मथुरा, बिकॉज आप सीधा ब्रज में नहीं घुस सकते, मथुरा होकर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लोग यूजुअली यमुना पे सबसे पहले ऐसे विश्राम घाट पे जाते हैं, वहाँ स्नान करते फिर ऐसे देखते। और अभी जो एक क्रम जो है जैसे हम देख सकते, पहले केशी घाट स्नान किया, फिर कालिया घाट में, यानी कि उधर से इधर आ गए, मथुरा से इधर ऐसे। तो और उसके बाद जो है वो दोनों यात्री जो है गोपाल मंदिर के दर्शन करने गए। तो अभी अगर आप टेक्निकली आप देखेंगे जो कि वृंदावन सभी जो जाते हैं, तो केशी घाट और उस तरफ पड़ता है, गोविंद मंदिर के साइड की तरफ ही बढ़ता है, वहाँ से गोविंद मंदिर जाना आसान होना चाहिए। और इधर क्या है कि कालिया घाट इस साइड में उल्टी तरफ आ रहे हैं मदन मोहन जी के साइड में। पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, आज से 800 साल पहले, 800-900 साल पहले जो है, 700-800 साल पहले जो है, वृंदावन में बिल्डिंग ही नहीं होती थी, उस रास्ते से नहीं जाते थे, जिसमें आज हम जाते कि आपको जो है ना लोही बाजार क्रॉस करना पड़ेगा, बनखंडी माता से बीच की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा रास्ता है। उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो स्नान करके फिर वहां पर फाइनली उस मंदिर में जाने के बाद देवर उन्होंने विश्राम किया। तो गोपाल विग्रह के सौंदर्य से ने उनके मनों को हर लिया और परम सुख का अनुभव करते हुए वे दोनों दो चार दिन वहां रुके। वहां दो चार दिन जो वहां पर तो टोटल ट्रिप ही दो चार दिन का होता है, दो चार दिन तो बड़ी बात का होता है, एक दिन में 7 मंदिर के दर्शन करेंगे, गड़गड़ 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 सुबह सुबह सब पहुंच गया, उसके बाद ना हाँ उसके बाद होता है ना मैराथन दौड़ होती है, भागो इससे पहले कि मंदिर बंद हो, भागो दर्शन बंद हो, भागो। तो दो चार दिन रुके, फिर दोनों ब्राह्मणों में एक बूढ़ा था, एक बूढ़े थे और दूसरे तरुण। तो ये तरुण व्यक्ति वृद्ध की सहायता कर रहे थे, शिष्टाचार है, वैष्णव शिष्टाचार भी है, लौकिक शिष्टाचार भी है। तो तरुण ब्राह्मण वृद्ध की सदा सेवा करते थे और वह वृद्ध ब्राह्मण उनकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न रहते थे। तो वृद्ध ब्राह्मण ने उस तरुण से कहा, तुमने तरह तरह से इन सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता की है, मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता, सच में नहीं किया, क्योंकि उसका पुत्र तो घर में था, बाद में पता चलेगा, बात गलत नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकावट नहीं हुई, तो कोई थकावट नहीं हुई। तो यदि मैं तुम्हारा आदर ना करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा। तो वो कौन, वृद्ध ब्राह्मण कह रहे, अतः मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपनी कन्यादान दूंगा। अब यहीं से कहानी में ड्रेस करते है ना। तरुण ब्राह्मण ने कहा, महोदय मेरी बात सुने, आप अत्यंत असंभव बात कर रहे हैं, वो खुद ही कहने लगे, ऐसा कभी होता नहीं। क्या नहीं होता, तो ये अब आगे देखते हैं। महाकुलेन तुम्हें विद्या धनादि प्रवीण, আমি অকুলীন আর ধন বিদ্যাহীন, মহাকুল তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীর, আমি অকুলীন আর ধন বিদ্যাহীন, মহাকুলীন তুমি বিদ্যা মহাকুল তুমি বিদ্যা ধনাদি প্রবীর, আমি অকুলীন আর ধন বিদ্যাহীন। आप उच्च कुल वाले व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं और अत्यंत धनी हैं, और मैं न तो उच्च कुल का हूं, न ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है और न ही धन। तो ये वजह है जिस वजह से जो है वो इस वक्त मना कर रहे हैं। श्री राधा अधिकरण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, तो यही वजह है जिस वजह से जो वो मना कर रहे हैं। पिछले प्यार में सबने सुना कि वो कह रहे थे कि आप अत्यंत असंभव बात कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद अभी जो है तात्पर्य में बताएंगे भी अभी कि पिछले श्लोक को तात्पर्य सुनिए। पुण्य कर्मों से मनुष्य चार प्रकार के ऐश्वर्य से समृद्ध हो सकता है। उसका जन्म उच्च कुल में हो सकता है, वह सुशिक्षित हो सकता है, वह अत्यंत सुंदर हो सकता है या धनवान हो सकता है। भगवान की अभी दोबारा कर सकते कोई कहानी नहीं है। ये लक्षण है पूर्व जन्म में संपन्न पुण्य कर्मों के। क्या लक्षण है? चार चीजें, धन ऐश्वर्य दसवीं, चार चीजें जो है वो पूर्व कर्म के अनुसार जो है वो उसको मिल सकता है। आज भी भारत में उच्च कुल वाले कभी सामान्य कुल वाले से विवाह नहीं करते। भले ही जाति वही हो किंतु अपनी उच्चता बनाए रहने के लिए ऐसे विवाह नहीं किए जाते। कोई निर्धन व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति की कन्या से विवाह नहीं करना चाहेगा। इसलिए जब वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देने का प्रस्ताव रखा तो तरुण ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा विवाह संभव होगा। इसीलिए उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आप असंभव बात का प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं? इसे प्यार में ऐसा नहीं सुना जाता कि कोई कुलीन व्यक्ति अपनी कन्या किसी अशिक्षित तथा निर्धन व्यक्ति को दान दे। तो यहां पर जो है बहुत ही मतलब जो व्यावहारिक से बता रहे हैं, तो क्यों जो है विवाह ऐसे नहीं हो सकता बराबरी में अगर विवाह नहीं है, जैसे वैदिक प्रणाली में भी जो है अनुलोम और विलोम जो है प्रतिलोम विवाह के बारे में जो है वर्णन किया गया है। और यहाँ पर प्रॉपर यहाँ तक बता रहे हैं कि अगर भले ही जाति वही हो तो पर फिर भी जो है अभिजात कुल के जो लोग होते हैं वो सामान्य कुल के लोगों से जो है अपना विवाह देना जो है पसंद नहीं करते। यहाँ तक तो जो प्रचलन है वो इस प्रकार से है कि जो इसका टर्म ही है मैं भूल गया कि नहीं, मतलब जो निजी जाति का जो व्यक्ति है तो लड़की हमेशा ऊंची जाति मतलब अपने से ऊंचे में ही लड़की बिहाने का जो है रिवाज मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पर बता रहे हो खासतौर पर कोई अगर निर्धन है तो उसके पास मतलब धन भी नहीं है शिक्षा भी नहीं है, तब तो फिर ऐसे विवाह जो है वो इतना सुना नहीं जाता, इतना व्यावहारिक भी नहीं होता। तो इस प्रकार से तो अब प्रॉपर जो यहाँ पर जो है कि लौकिक विचार जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तात्पर्य से जो है कई बार इस प्रकार से जो है एक भ्रांत विचार भी जो है निकाला जा सकता है, इसका मतलब जो है यही तरीका है। और कृष्ण भावना में प्रभुपाद के जो प्रभुपाद ने जो निर्देश दिए हैं विवाह को लेके वो बिल्कुल अलग है। वो जो है बेसिक चीज़ें सबसे पहली चीज़ जो प्रभुपाद ने बोला है भक्तों के लिए कई अपने कई पत्रों में तात्पर्यों में भी कि व्यावहारिक रूप से जो है सबसे पहली चीज़ जो प्रभुपाद ने मतलब जिसके विषय में जो है जोर दिया है और जिसमें कोई कटौती या समझौते की गुंजाइश नहीं है वो ये है कि अगर शादी भक्तों भक्त कर रहा है तो भक्त से ही करें, मतलब तो हमारे लिए वही बराबरी है। यहाँ पर जब बराबरी की बात हो रही है तो वो कृष्ण भावना में समाज में जो है भक्ति शादी भक्त से ही हो यही बराबरी है। तो नहीं तो प्रभुपाद बता रहे कई जगहों पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा नहीं होगा तो मतलब उसके आध्यात्मिक जीवन में तूफान आ सकता आएगा ही आएगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर वहाँ पर प्रभुपाद के जो निर्देश हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं और बहुत ही सीधे साधे हैं कि ठीक है जब विवाह करें तो जो लड़का हो उसके पास जो है कमाई का जो है कोई जरिया हो और वो और जो है सेवा के लिए वो तत्पर हो। यहाँ तक कि कई भक्तों को जो विवाह के लिए उद्यत रहे हैं 70 के दशकों में और 60 के दशकों में भी प्रभुपाद ने बोले उसके लिए प्रभुपाद ने सीधा निर्देश दिया है ठीक है आप विवाह करिए और आगे जाकर जो है एक कृष्ण और कृष्ण भावना आंदोलन का एक केंद्र खोलिए। ये प्रभुपाद का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। अगर आप विवाह कर रहे हैं तो आप विवाह के फौरन बाद जो है कृष्ण भावना का जो है केंद्र खोलिए। और अभी भी इस वक्त भी 2000 मतलब 21वीं सदी में भी जो है जो एकनिष्ठ गृहस्थ हैं उनको भी देखा गया कि उन्होंने ऐसा ही किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि उन्होंने विवाह किया, विवाह के बाद जो है गुरु के आगे से जो है गुरु के आगे से भी दोनों चीजें गुरु के आगे से विवाह कर लेना या गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करना उसके बाद गुरु के आगे से विवाहित जीवन चलाना भी, ये नहीं कि सिर्फ विवाह करने के लिए गुरु की आज्ञा प्राप्त कर लेना फिर मनमानी करना। तो प्रबंध जो है बहुत कड़े नहीं है बिल्कुल सीधे निर्देश है कि जो है कि अगर आप जो है निर्देश में रहते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है डर नहीं है। राधा प्रबंध बता रहे हैं कि पापा एक जगह पर जो भक्ति विनोद ठाकुर का भी जो उदाहरण मतलब भक्ति विनोद ठाकुर के वाणी से शिक्षा से जो है प्रबंध जो है उद्धृत करके बता रहे हैं कि यदि भी जो है वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार जो है और अपने गुरु महाराज का भी उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने जो है वो ब्रह्मचारी और सन्यासी जो है वो तैयार किए हैं। पर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि इस युग में जो है गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करना जो है ज्यादा व्यावहारिक है, परंतु हम देख पाते हैं कि उनके पुत्र जो है उन्होंने वो ब्रह्मचारी आश्रम में आजीवन जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो खैर जो भगवान ठाकुर ने जो निर्देश दिए गृह ठाकुर बोले ठाकुर श्रद्धा हरि बोले ठाकुर, तो आप जिस भी अवस्था में क्यों ना हो वहां से आप भक्ति शुरू करें उस आश्रम में उस वर्ण में रहकर, किसी को दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। दैवी वर्णाश्रम प्रणाली जो है ब्रह्मचारी आश्रम से नहीं शुरू होता, जिस आश्रम जिस वर्ण से है वहां से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है संसिद्धि हरिदोषण, कि भगवान की जिस अवस्था में उस अवस्था से जो है भगवान की तुष्टि की जाए, पर वो भगवान की तुष्टि सेवा से होती है। प्रभुपाद एक जगह बता भी रहे हैं, एक भक्त को निर्देश देते हैं प्रभुपाद से, उन्होंने शायद प्रश्न कुछ इस प्रकार से ही किया कि अभी हम कैसे करेंगे, शादी के बाद कुछ शायद कुछ समस्या थी, और उन्होंने बोला कि ये सब देखना जो है मेरा काम नहीं, इट इज नॉट माई बिजनेस। प्रभुपाद उनका जवाब दे रहे हैं, इट इज नाइदर योर बिजनेस नॉर माई बिजनेस, इट इज कृष्णा बिजनेस, डोंट टेक इट पर्सनली। कहने का मतलब ये है तो कि ऐसे इस तरीके से, तो ये सेवा है, तो सेवा को सेवा की भावना से लें तो तभी जो है मतलब आप कोई व्यावहारिक प्रगति कर सकते हैं। तो वहां पर प्रभुपाद जो है इन इन निर्देशों को बहुत मतलब कड़ाई से पालन करने के लिए बोल रहे हैं। शुरुआती तौर पर जो है ये है कि जो भी इस आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं वो उनकी बराबरी इससे देखी जाती है कि वो भक्ति में जो है कितने परिपक्व हैं, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। और क्योंकि भक्त समाज में जो है ये बहुत बड़ी विडंबना है, एक्चुअली भक्त समाज में ऐसी विडंबना नहीं है, जो भक्त समाज में अभी ठीक रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं उनकी समस्या है ये, कि जब भी जो है ऐसे विवाह का जो है प्रस्ताव और ऐसी चीज़ें बात आती है तो भक्त भी चाहिए होकर शुरू होता है, और उसके बाद भक्त के अलावा सब कुछ चाहिए, तो वहाँ पर जाके जो है बहुत फिर समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर वो व्यावहारिक नहीं रहता, क्योंकि फिर उसके इसका मतलब साफ है कि उसका उद्देश्य जो है कृष्ण भावना में इतने प्रकृति करना नहीं, अभी तो इंद्र नृत्य करना है कृष्ण भावना में के आड़ में रहकर, तो वहाँ पर जो है फिर दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती, दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। तो जैसे प्रभुपाद इसीलिए सेवा पर जो है विवाह के फॉर्म का जो है सेवा पर जो है काफ़ी जोर दे रहे हैं, और जैसे हम बता रहे हैं कि इक्कीसवीं सदी में ऐसे बहुत व्यवस्था हैं, अगर जैसे अगर आप दुबई क्षेत्र में जो मतलब दक्षिण दक्षिण पश्चिमी एशिया में जो प्रचार हो रहा है वो प्रचार जो है एक ग्रस्त जो है दंपति कर रहे हैं जो कि होलीनेस जयपदान स्वामी महाराज के शिष्य हैं, और उनको भी जो विवाह के बाद यही निर्देश मिले कि आप जाइए आप जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया में प्रचार कीजिए, जिसके वजह से हम जानते हैं कि हजारों भक्ति वृक्षा उसमें हजारों भक्ति वृक्षा स्कूल हजारों दुबई जैसे क्षेत्र में जो है 2000 से ज्यादा भक्ति वृक्षा ग्रुप्स बताए जाते हैं, उनके पीछे एक ही दंपति का हाथ है, विजय बहन उनको प्रेम पद्मिनी माता जी। तो ये उदाहरण हमारे पास, एक ऐसा एक उदाहरण जैसे बहुत उदाहरण, दिल्ली क्षेत्र में भी ऐसे भागदान हैं जो गृहस्थाश्रम में रह के जो है प्रचार कर रहे हैं, अपने केंद्र स्थापित किए उन्होंने। अगर आप पूर्वी दिल्ली में जाएं तो इंद्रेश विजित मिश्र प्रभु और श्याम वर्मा जी, फरीदाबाद क्षेत्र में जाएं तो भवेश्वर प्रभु जी और वर्मा जी कृष्ण वर्मा जी, तो ऐसे बहुत बहुत लोग हैं, तो इनको गृहस्थ दंपति कहा जा सकता है जो कि कृष्ण भावना पर प्रयास कर सकते हैं। ये प्रभुपाद का आदेश है और ये आदेश व्यावहारिक है, यहाँ तक कि हमारे पंजाबी क्षेत्र में भी जो है कई दंपति को देखा जाता है जो इकट्ठे मिलकर प्रचार करते हैं, भक्ति विश्वास चलाते हैं, तो ये भी जो है काफी सराहनीय है। तो ये उदाहरण, ऐसे सूरत हाल में जो है आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं और तब जो है उस चीज को बराबरी मानी जाएगी, अन्यथा जो है माया के सागर में बह जाना ये कोई वो असंभव है, ऐसे सूरत में जो है संभव नहीं होती है। और जहां तक कुलीन व्यक्ति का सवाल है, कुलीन उनको ये इस सारी की सारी जो भी यहाँ पर जो भी शर्तें रखी गई हैं वो सारी चीजें पूरी होती हैं, बशर्ते सबसे पहले ये चीज पूरी हो, इसके अंदर का सारी चीजें, तो खासतौर पर जो भक्त समाज में है चाहे वो भक्त जो विवाह के इच्छुक हैं और वो भक्त जो विवाह करवाने के इच्छुक हैं, यानी कि उनके माता पिता अगर वो भक्त समाज में है तो उनके लिए जो है ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये निर्देश है, सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है। अक्सर देखा जो जो भक्तों के घर में भी जो ज्यादातर की जो जो आजकल जो कहे कला देखने को मिलता है उसका एक बड़ा कारण यही है कि शुरुआत में जो है ये गलती करना शुरुआत में। और जहां तक ये सवाल कि बराबरी जैसे यहाँ पर बात करी जा रही तो कि लड़के और लड़की में बराबरी, तो ये बहुत मुश्किल है भक्त समाज में, व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि खासतौर पर हिंदुस्तान में यहाँ पर हिंदुस्तान में जिसमें राधेश्याम प्रभु जी के सौजन्य से जो है युवा वर्ग का जो प्रचार है वो बहुत सशक्त है। युवा वर्ग को जो प्रचार किया जाता है, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको जो संरक्षण मिलता है वो जो है वो बहुत ही व्यवस्थित और नियमित होने के कारण युवकों का जो विकास है, आध्यात्मिक विकास है, वो बहुत बहुत संतुलित मात्रा में पर जो है नियमित रूप से जो है ऊपर की तरफ बहुत अच्छा विकास देखा जाता है, जो कि इससे पहले 90 के दशक से पहले जो है इस प्रकार से जो है युवकों के लिए जो है प्रचार की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। तो पर उसके बाद से जो है तो ये है, और इसीलिए जैसे इस्कॉन के केंद्र में जहाँ पर इस्कॉन यूथ फॉर्म सेंटर्स है तो हैं वहाँ पर जो है ये बहुत ही जो युवकों को जो प्रशिक्षण मिलता है उसके वजह से उनका आध्यात्मिक विकास जो बहुत अच्छे तरीके से होता है। पर माता जी इसके लिए जो है अभी भी इस प्रकार का जो की व्यवस्था जो है वो नहीं है, तो उतनी संगठित रूप से नहीं है, उसके कई व्यावहारिक वजह हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता है, क्योंकि भारतवर्ष में जो है माता जी इसको जो है वो इतनी आज़ादी नहीं है भक्ति करने की, तो उनको जो है बहुत बंदिशों में भक्ति करनी पड़ती है इसकी वजह से जो है। और इस और सेम एज में जहाँ पर जो वैदिक प्रणाली के अनुसार अगर आप देखें तो जो पुरुष है तो वो उनके अंदर जो है इस प्रकार के आध्यात्मिक विकास करने का धैर्य जो है माता जी से ज़्यादा होता है वैदिक प्रणाली के अनुसार, इस वजह से जो है माता जी का आध्यात्मिक विकास जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि बिल्कुल टक्कर के जो है मिलेंगे ऐसा होने वाला नहीं है, इसीलिए दारोमदार जो है ज़्यादातर जो है पुरुष पर ही होता है। तो और इसीलिए माता जी भी जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो पुरुष जो है जो आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील है और जिनका जीवन का लक्ष्य जो है आध्यात्मिक विकास है वो भौतिक रूप से भी जो है बहुत ज़्यादा यू नो क्रियाशील होंगे, हो सकता है ना होने के आसार ज्यादा है। तो ये फैसला जो है दोनों को करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके घर वालों को भी, इस बारे में अक्सर ज्यादा बातचीत नहीं होती पर बातचीत होना बहुत जरूरी है सामान कि ये इतना इस बारे में जो है ज्यादा चर्चा नहीं होती। और शायद मैं इतना सटीक व्यक्ति नहीं हूँ ब्रह्मचारी आश्रम में इस बारे में बात करने के, पर शास्त्र के आधार पर बात करी जा सकती है कि ये अक्सर जो है रहता है। और कई बार भक्तों के समाज में यहाँ पर आते हैं, कई बार हम देखते हैं हमारे मंदिर में देखते हैं कई बार कई भक्तों के घर वाले यहाँ पर आते हैं और इस तलाश में आते हैं कि कोई अच्छी लड़की या कोई अच्छा लड़का सुपात्र मिले। तो सुपात्र की परिभाषा क्या, सबसे पहले ये देखनी पड़ेगी आपकी सुपात्र की परिभाषा क्या है। तो पापा जो बता रहे सुपात्र की परिभाषा है कि वो जो है अपने होने वाली पत्नी का जो है भार ग्रहण करने के लिए तैयार है। दानवीर महाराज को एक पत्र लिखते प्रभात बोल रहे हैं कि विवाह का मतलब यही है कि आप जो है आपने अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, उसके बाद प्रभात उनका निर्देश दे रहे कि आप जो है आपने अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है तभी जो है आप अपने भार्या का जो है वो भार जो है आप ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं है भार्या पसंद नहीं है तो चलिए हम कोई बात नहीं, अगर भार्या पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो प्रभात को लिखिए, प्रभात बोल रहे हैं सर भी भार्य पसंद है तो ठीक है, भार्य पसंद नहीं तो प्रभात की चिट्ठी लिख दूंगा, प्रभात मेरे को संन्यास दे दो और भार्य को जहन्नुम जाने दो। तो ये चीज ये पहली जिम्मेदारी जो है उठाने के लिए तैयार हो वो खुद अपनी भार्य को, इसका मतलब है कि साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। और जो जो माता जी हैं और माता जी के घर वाले वो भी इस बात को जो है बहुत यू नो बहुत पल्ले बांधे बेसिकली कि जो है यही सबसे पहले क्राइटेरिया जो है वो अगर जो है पात्र में देखेंगे तो शायद धोखा नहीं खाएंगे। इसीलिए जो है पात्र में सबसे पहले देखेंगे वो जिम्मेदार है कि नहीं है। गैर जिम्मेदार लड़कों से अपनी शादियां ना करें। गैर जिम्मेदार का मतलब है जिनकी उम्र हो गई है, ना कोई कामकाज का ठिकाना, ना कोई घर बार का ठिकाना, ना कोई किसी के संरक्षण में, ना कोई जिम्मेदारी। ऐसे व्यक्ति को जो है गैर जिम्मेदार हम लोग ऐसे व्यक्ति को माने इसको अनुफॉर्म में ऐसे को एक संज्ञा दी है, उसको कहते हैं ना वो ब्रह्मचारी ना वो गृहस्थ, तो वो व्यक्ति होता है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र से जो है अपने 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 से बचे। क्योंकि इनके लिए शास्त्र में कोई संज्ञा नहीं है। एक जो है पतित गृहस्थ को गृह में भी बोला जाता है, एक पतित ब्रह्मचारी कुछ होता नहीं है। या तो वो ब्रह्मचारी होता है नहीं तो ब्रह्मास्त्र होता है। तो जिसका कोई आश्रम नहीं है, आश्रम का मतलब जिसका कोई आश्रय नहीं, जो किसी के संरक्षण में नहीं है। मंदिर में घूमने वाले घूमने करने वाले लोग जिनके हाथ में मालाओं जरूरी नहीं है और वो शादीशुदा नहीं है तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से कि हर शादीशुदा व्यक्ति गृहस्थ नहीं कहलाया जा सकता, उस प्रकार से हर अविवाहित लड़का ब्रह्मचारी नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो संरक्षण और प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं है। यह शास्त्र का विधान है। उसी तरीके से जो है कन्याओं के लिए भी, अगर कन्या का मतलब यही है कि वो विवाह से पहले माता पिता के संरक्षण में है, ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ रही है पार निकल आए उसकी, और विवाह के बाद जो है वो पति के संरक्षण में है, नहीं कि बिल्कुल वो आजाद ख्यालात की और जो है घर से मतलब यू नो आजाद ख्यालात का मतलब कि मुझे आजाद करो। तो अगर आप आजाद रहना चाहते हैं तो आप शादी ना करें और किसी और की जिंदगी बर्बाद ना करें, तो आप इसके लिए भी आजाद हैं, मुकम्मल आजादी है आपको। तो ये शास्त्र का विधान है, तो ये कोई बाध्य नहीं है। पर जब हम अपने आप को शास्त्र की एक अंश से जो है अपने आप को बाधित कर रहे हैं तो दूसरी भी चीजें हम पर लागू होती हैं। बराबरी जो है यहां पर देखी जाती है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कितने इच्छुक हैं, उस इच्छा में बराबरी और उस इच्छा में प्रयास। प्रभुपाद बताते हैं एंथुजियाज्म इन्वॉल्व्स इंडस्ट्रियसनेस, यानी कि आप उस पर कितनी मेहनत डालने के लिए तैयार हैं, तब आप जो है इस बारे में बात कर सकते हैं। कहते हैं इस बारे में चर्चा करना समय काफी है मौजूद। तो ये चीजें जो है इस चीज का प्रशिक्षण और इस तरह इसके बारे में चर्चा और ये बहुत जरूरी है। नहीं तो जो है अक्सर, और क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि इस बारे में जिनको ज्यादा प्रशिक्षण जानकारी या जिन्होंने इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की होती है, कई बार ऐसे लोग जो है बेतुके सलाह देने से पीछे नहीं हटते। खासतौर पर हम देखते हैं कि कृष्ण मामले में इतने प्रचार करना सिद्धांत के आधार पर हो सकता है, तो पर जब हम किसको सलाह देते हैं या तो शास्त्र के अनुसार या वो पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसार ही ऐसे सलाहें दें, तो ये जो हम जो भी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि हमने जैसे बताया शायद हम इतने सटीक व्यक्ति नहीं है, पर शास्त्रों के आधार पर जो है ये बात करी जा सकती है। प्रभुपाद के जो शास्त्र में मतलब प्रभुपाद की वाणी, जो कि प्रभुपाद ने इसमें बहुत निर्देश दिए हैं इन चीजों पर, तो यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। किसी को प्रश्न नहीं सकते सेम चीज, फिर वो ऐसी व्यक्ति से उनका विवाह हो कि जो खुद अच्छे से माला नहीं करेंगे, नहीं तो वो खुद भी नहीं करेंगे और उनको भी नहीं करने देंगे। हालांकि ये देखा गया है व्यावहारिक तौर पर कि अगर दो में से एक परिवार का सदस्य जो है जिनसे उनकी का विवाह होने वाला है अगर बहुत फिक्स्ड है तो दूसरे को खींच लेते हैं, पर फिर भी ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे कई हमारे देख सकते हैं गृह दंपतियां हैं जिसमें से कई केसेस में जाकर माता जी जो है वो पहले जुड़ती हैं और फिर धीरे धीरे वो अपने ब्रह्मजीत को भी जिसमें जोड़ लेते हैं, या कभी कभी प्रभु जी जोड़ते हैं माता जिसको जोड़ लेते हैं, तो ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। और जहां ऐसा नहीं हुआ उसके लिए जो है फिर क्या होता है, दोनों का दोनों की जिंदगी जो है जहन्नम बन जाती है। और अक्सर जो है ऐसे ऐसे सूरत में जो है वो जिनके आश्रम में वो जो व्यक्ति भक्ति करना चाह रहे हैं वो उस परिवार का वो परिवार जो उसको दुश्मन के रूप में देखने लगता है। देखा जाता है कि हम मंदिर में ऐसे लोग आते हैं और वो आके जो है वहां पर शोर भी मचाते हैं, बोलते हैं इन गंजों की वजह से जो है हमारे परिवार में आग लग गई। तो इसीलिए जो है इस बारे में जो है इस जिसका ध्यान रखना सबसे पहले ये चीज है। अक्सर जो है दूसरी चीजों पर बहुत ज्यादा जो कि बिल्कुल एक जो हमारी कर्म कांडीय या हमारी कार्मिक मानसिकता का जो है सबूत होता है कि सबसे पहले ये देखो कितना ऊर्जा है, कितना पैसा है, कुंडली मिल रही है, ये वो सब कुछ। और जब सब कुछ की तसल्ली हो जाए तब देखो भक्त है कि नहीं है तो ठीक है। तो ये तो व्यावहारिक रूप से बाहर भी मुमकिन नहीं होता। ज्यादातर सूरतों में जो है हमारे हमारी हमारी लड़कियां इतनी इतनी सुशील या इतनी संपन्न नहीं होती है कि उनका स्वयंवर कराया जाए कि 50-50 लड़के मिले, और ना ही हमारे लड़के इतने इतने काबिल होते हैं कि जो है पीछे जो है लड़के चिराग लड़की वाले चिराग लेने के दौरान, ठीक है ना, बिल्कुल व्यावहारिक रूप से बात करते हैं ना। तो ये है। और उसके बाद भक्त समाज में जहां के मान लीजिए टोटल भक्त समाज में पंजाबी क्षेत्र या पूरे दिल्ली को मिलाया जाए कितने भक्त होंगे, और उन भक्तों में से कितने ऐसे भक्त होंगे जो अविवाहित होंगे, और उनको फिर अगर आप परिभाषण करें तो कितने जो कि पुरुष हैं कुछ, कितने जो कि कन्या है स्त्री, तो फिर क्या बचा। तो उसके बाद हम फिर ये देखना शुरू करें ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो इस तरह अच्छा है कि क्योंकि ये सारी जो आपकी ये जो सारी आपकी इच्छाएं हैं ये जो सारी आपकी शर्तें हैं तो ये तो बाहर के समाज में चल सकती है, तो बाहर के समाज में लेके जाइए। तो आप जो है भक्ति में आने के बाद अब ये चीजें क्यों देख रहे हैं, फिर आप बाहर जाइए, ये चीजें बाहर देखनी होती। जब हम मंदिर आते हैं तो मंदिर आके जब हम यहाँ पर क्वार्टर में आते हैं यहाँ पे मिलते हैं तो हम कभी आके यहाँ पर भगवान से पूछते हैं या मंदिर ये पुजारियों से पूछते हैं प्रभु जी यहाँ पर काम करने क्या कहते हैं नौकरी मिलेगी। सबको किसी गधे को भी मालूम है बात जो है ये बात इस दीवार से बाहर करने की है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर मंदिर के अंदर आके इसी प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं तो वो भी गधे से कम नहीं है, चाहे बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। जहां तक इन सब शर्तों का सवाल है, इन सब शर्तों का को जो है मिलान करके जो है बात शादी होती है, उसके बाद क्या होता है। और तभी भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो बेहतर है कि यहीं पे आंखें खुले तभी उसको कोई और इलाज मिले, स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स जैसे कहते हैं। तो इसके बारे में इसका मतलब क्या है बेसिकली कि गोल क्लियर नहीं करना क्या है, हम इसके उद्देश्य से यहां पर आए थे, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इसे कुछ क्लियर नहीं। माया के द्वारा अच्छा देखे जो कि आसक्तियों की वजह से जो है और स्ट्रांग होती चली जाती है, और तभी वो इस प्रकार से जो है भ्रांत धारणाओं के आधार पर जो है जीने चलती है। ऐसी प्रभुपाद जी जो रामायण कोट कर रहे हैं कह रहे हैं कि देशे देशे कलत्रादि रानी, यानी कि अगर जो पहले प्रवत होता है क्षत्रिय लोग भी जो है इसलिए अलग 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 देशों में विवाह कर लेते थे। ये भी है, ये रामचंद्र जी के वचन है, रामायण के भी नहीं, देशे देशे कलत्रादि रानी। तो अगर जो है सुयोग पात्र जो है वो अलग अलग देशों में मिल सकते, देश का मतलब क्या है, वो तो अलग अलग मुल्कों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे देश में, हम तो इसमें भी राजी नहीं होते सो कॉल्ड इंटरकास्ट मैरिज के नाम पर। हमारी जाति क्या है भागवत के अनुसार, पहलो शूद्र संभव, सारे शूद्र जाति। तो इस बात का कन्विक्शन हो चाहे ना हो, जब इस बात की बात होती है तब आदमी सर तो हिलाते अंदर से होता है पागल है बात करना। तो फिर आप भागवत की विधि से सुख की उम्मीद भी मत करिए, फिर आप जो है उसी विधि से चलिए जिस विधि से आप आज तक चलते आए हैं, और शायद उसमें आपको ज्यादा सफलता मिल जाए, क्योंकि आपका 22-25-30 साल का एक्सपीरियंस शायद काम आ जाए, और वो आपका 22-25-30 साल का एक्सपीरियंस यहां पर जीरो वैल्यू उसके। तो इसलिए ये इतना कामयाब नहीं, और इसलिए ये भी अपने आप में एक अपने आप में हालांकि ये देखा जाता है, देखिए कलयुग में कोई भी जो भी अभी हम लोग इस्कॉन में प्रयास कर रहे हैं, ना ही कोई इस तरीके से कोई वो कर सकता है, दावा कर सकता है कोई ब्रह्मचारी की हम 100% ब्रह्मचारी हैं, ना कोई 100% ये दावा कर सकता गृहस्थ है, ये दावा कर सकते हम 100% गृहस्थ है। सभी लोग जो इस रास्ते में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, परंतु वो प्रगति करने के लिए जो है आपको वो विचारधारा का जो है बहिष्कार करना पड़ेगा जिससे जो है आप प्रगति आपकी प्रगति रुकती है, यानी कि बौद्धिक विचारधारा। तो वो भी चलता रहे उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके वो भौतिक विचारधारा को डबटेल करने को जो है भक्ति नहीं कहते, वो डबटेल नहीं होती, विचारधारा डबटेल नहीं होती। भगवान की सेवा में जो है आपकी कला डबटेल हो सकती है, आपका व्यवसाय डबटेल हो सकता है, आपके आपके पास जो ऐश्वर्य वो डबटेल हो सकता है, आपकी विचारधारा डबटेल नहीं हो सकती। ये कहीं नहीं लिखा हुआ शास्त्रों में कि मैं जो जिस विचारधारा से आया हूं, जिस मानसिकता से आया हूं, उसी मानसिकता को जो है भगवान की सेवा में लगा दूं तो वो प्योरीफाई हो जाएगा। उसको कहते हैं कर्म मिश्रा भक्ति। तो वो नहीं हो सकता, उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, उसका शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है और ये प्रक्रिया है, इसमें वक्त लगेगा। और जहां तक उदाहरणों का सवाल है, उदाहरण की कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है कि हम उदाहरण हो चाहे ना हो, अगर आप इस मार्ग पे हैं तो आप उदाहरण हो चाहे ना हो जो शास्त्र ने बताया आपको कर रहे हैं उस बात को। अगर आपके पास उदाहरण नहीं है तो आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो फिर इस मार्ग पर चलने का कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला आपको भी और दूसरे को भी जो आपके साथ। व्यक्ति अपना कन्या का अशिक्षित निर्धन व्यक्ति को दान दे, नहीं, परपट की बिगिनिंग में नहीं है वो कह रहे हैं, जो निर्धन लड़का है वो अपने बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वो निर्धन है तो उसे मालूम है असंभव प्रस्ताव है ना, ये लिखा मैं बात करता हूं, उसका जन्म मुश्किल में हो क्या, ये लक्ष्य शुरुआत में तो है ही नहीं, देखो नहीं, आप उच्च कुल वाले व्यक्ति हैं, ये अनुवाद सुशिक्षित हैं और अत्यंत धनी हैं, आप यानी कि वो वृद्ध व्यक्ति, और मैं ना तो उच्च कुल का हूं, ना ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है और न ही धन है। तात्पर्य पढ़ देते, पूरा तात्पर्य पढ़ देते, मैं पूरा तात्पर्य पढ़ देते। आज भी भारत में उच्च कुल वाले कभी सामान्य कुल वाले से विवाह नहीं करते, भले ही जाति वही हो किंतु अपनी उच्चता बनाए रहने के लिए ऐसे विवाह नहीं किए जाते। कोई निर्धन व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ ये गलत लिखा हुआ, नहीं चाहेगा वो, मतलब उस लिहाज से नहीं हो भी सकता, नहीं वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, नहीं विवाह नहीं विवाह हो गया मतलब नहीं करना चाहेगा, मतलब कि वो उसकी उस चाह से कुछ होने वाला नहीं है, वो चाह जिसके दिल में ही दफन हो जाएगी। यहां पर देखिए, देखिए यहां पर ये शब्द सुनिए, ये हिंदी और अंग्रेजी है ना, ये पाठक है, नो पुअर मॉडर्न मैन विल डेयर मैरी द डॉक्टर ऑफ द डेयर। यहां पर ऐसा लिखना चाहिए, शायद अनुवाद इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई निर्धन व्यक्ति जो है किसी की जरूरत हिफाजत नहीं करेगा, तो यहां पर हाँ तो डेयर का मतलब तो जरूरत करना है। अच्छा है नाम पत्नी के बारे में जो है चर्चा गरुड़ पुराण में भी आती है, और एक और जिगनी बने नक्षत्र गर्भ संहिता में उनका जो वर्णन है कि वो पहले से जो नागपत पत्नियां थी वो उससे पहले से भी जो है भक्ति में थी, पर उनका कुछ अपराध थे जिसके वजह से जो भी कालिया से हुआ हुआ कारण जो नागपत्नियों की भक्ति के वजह से जो है अल्टीमेटली भगवान ने कालिया पर जो है ये कृपा की, और दशम स्तंभ में जैसे कि तात्पर्य में जगदीश्वर चंद्रिका को विद्युत करते हुए जो है वहाँ पर लिखा गया है, मतलब भगवत शिष्यगण दे रहे हैं कि एक मतलब एक कल्प में जैसे जैसे गरुड़ जी जो है भगवान की सवारी है, एक कल्प में कालिया जो है भगवान की सवारी बनी हुई, तो यहाँ तक का जो है दर्जा जो है कालिया को प्राप्त हुआ, कालिया ने ऐसे प्रार्थना की थी तो यहाँ तक तो हाँ। तो ये देखिए जब भक्ति जो है वो आध्यात्मिक का मतलब क्या है, वो आध्यात्मिक का मतलब देखिए आध्यात्मिक जगत पर भौतिक कानून लागू नहीं होते, जब हम बोलते हैं आध्यात्मिक इसका मतलब आध्यात्मिक शब्द का मतलब है तो उस पर कोई भौतिक कानून लागू नहीं होगा, भौतिक जगत का कानून इस प्रकार से कि अक्सर जो है देखा जैसे कि पुण्य का भाग मिलना, पुण्य का भाग मिलना समझ, पर भक्ति का भाग हर किसी को मिलता है, एक भाग के साथ कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो डेफिनेटली उसको जो है उससे लाभान्वित होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भाग के घर में रह रहा हो और वो जो है शक्ति से भक्ति कर रहा है और उसका प्रभाव जो है आसपास के लोगों में नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अक्सर जो है जब भक्ति के भाग की बात होती है तो वो पति और पत्नी के बीच में मान के चला जाता है, पिता और पुत्र के बीच में मान के चला जाता है, पर भाई बहनों का क्यों, और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति एक घर का एक लड़का है बल्कि एक लड़की भक्ति में है, उसके बाद उसके भाई बहन लग गए, घर वाले लगने लग गए, तो ये अपने आप में सबूत है, यहाँ पर वो भौतिक वो नियम लागू नहीं होता कि पति का जो पुण्य का हिस्सा है वो तो पत्नी को मिलेगा और पत्नी का जो है वो जो मर्जी कर ले उसको पति को उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, अगर वो पत्नी जो है वो रोज भगवान का भोग जो है वो अर्जित करके जो प्रसाद घर में खिला रही है तो असर नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि वो पति है उसका फिर उसी लिए, और कोई भोग वो किसी बाहर वाले को खिलाए तो वो बंद बन जाएगा ऐसा नहीं बनते हैं, हमने देखा है वक्त लग सकता है, कई बार ऐसा भी होता है 10 से 15 15 साल लग जाते हैं पर अल्टीमेटली जीत भक्ति होती है, ये परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम का मतलब ये नहीं कि जब आदमी मृदंग लेके बाहर निकलते हैं तभी विजय होती है, जो इस प्रक्रिया का पालन करता है उसकी जीत सुनिश्चित है, नहीं तो भागवत में जैसे बोला कि पराभव अबोध जागस, नहीं तो उसकी शिकस्त जो है वो भी निश्चित है, जो भक्ति में नहीं है वो गया, तो ये कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई घर में कोई भक्ति कर रहा है दृढ़तापूर्वक भक्ति कर रहे हैं और उसका असर नहीं पड़ेगा, पर वो खुद ही विषयवासी है भी भक्ति कर रहा है आज एक कदम आगे कल दो कदम पीछे उसका कुछ खुद का ही जो है कोई ठिकाना नहीं है तो उससे असर नहीं पड़ेगा, तो ये जरूर तो ये तो बहुत ही व्यक्तिगत चीज है और व्यक्ति व्यक्ति विशेष पर जो है ये निर्भर करता है कि वो कितना भक्ति के मार्ग में जो है, तो इसीलिए जो है व्यावहारिक रूप से जो है यही हमेशा जो है निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो बहुत शक्ति से भक्ति करते लगा रहा है वो उस माप से ना टिके तभी कोई चांस है, कई बार भक्त लोग ऐसा भी कुछ सोचते हैं कि नहीं नहीं भक्ति हम तो भक्ति कर रहे हैं पर घर वालों को भक्ति करने के लिए जो है हमें समझौता करना पड़ेगा, देखिए सिद्धांत से जब हम सिद्धांत से समझौता करते हैं कुछ भी सहूलियत वसूलने के लिए तो अंत में ना हमारे हाथ में वो सहूलियत रहती है ना वो सिद्धांत, समझौता समझौता रह जाता है, इसीलिए सिद्धांत पर समझौता न करें, हाँ ये पर सिद्धांत को लागू करने के लिए फेर बदल हो सकता है वहां तक ठीक है, तो वो भी मार्गदर्शन में है तो फिर मार्गदर्शन उस प्रकार के निर्देश लेकर ही जो है फेर बदल कर तब आप सुरक्षित।